ये आकाशवाणी है। अब आप नवीन सक्सेना से समाचार सुनिए। सरकार ने आज केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन की घोषणा की। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि 7वें वेतन आयोग का कार्यकाल 2026 में समाप्त होने वाला है और अभी 8वें वेतन आयोग के गठन से वेतन पैनल की सिफारिशें प्राप्त करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था तो 2026 में इसका टर्म कम्प्लीट होता है।
श्री वैष्णव ने कहा कि आयोग के लिए एक अध्यक्ष और 2 सदस्यों की नियुक्ति जल्द ही की जाएगी। नई दिल्ली में आज केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक हुई। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मंत्रिमंडल ने स्पेस सेक्टर को लेकर बहुत बड़ा फैसला किया है। वर्ष 2040 तक भारत के चांद पर पहुंचने के लक्ष्य में तीसरे लॉन्च पैड की अहम भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि 3,985 करोड़ की लागत से तीसरे लॉन्च पैड को मंजूरी दी गई। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज स्पेसएक्स मिशन के तहत 2 उपग्रहों की डॉकिंग प्रक्रिया को सफलतापूर्वक संपन्न किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि की प्रशंसा करते हुए इसरो के वैज्ञानिकों और उपग्रह की अंतरिक्ष डॉकिंग के सफल प्रदर्शन के लिए अंतरिक्ष दल को बधाई दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम का आधिकारिक स्वागत किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उपस्थित थे। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए सिंगापुर के राष्ट्रपति थर्मन शनमुगरत्नम ने कहा कि भारत और सिंगापुर डिजिटल क्षेत्र और सतत विकास में नई संभावनाएं तलाश रही हैं। राष्ट्रपति थर्मन आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के साथ विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी सिंगापुर के राष्ट्रपति के साथ मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कृषि क्षेत्र को सहयोग देने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ICAR और देशभर के कृषि विश्वविद्यालयों से सक्रिय भागीदारी का आग्रह किया है। आज कर्नाटक के धारवाड़ में कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय के अमृत महोत्सव को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने ये बात कही। श्रम और रोजगार मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने कहा है कि कौशल और मानकों को परस्पर मान्यता जैसी पहलों के जरिए भारत में वैश्विक श्रम शक्ति की कमी दूर करने की क्षमता है। नई दिल्ली में रोजगार के भविष्य पर सम्मेलन में श्री मांडविया ने इस बात पर बल दिया कि कौशल प्रदान करना प्रमाण पत्रों तक सीमित नहीं होना चाहिए। सरकार की कई महत्वपूर्ण पहल के साथ वर्ष 2025 की शुरुआत हुई। इससे आत्मनिर्भर, प्रगतिशील और एकजुट भारत के प्रति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का पता चलता है। कृषि और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने से लेकर वैज्ञानिक अनुसंधान को आगे बढ़ाने और सांस्कृतिक विरासत को प्रोत्साहन देने तक श्री मोदी के नेतृत्व में वर्ष के लिए कई क्रांतिकारी पहल की गई हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि सरकार नागरिकों के लिए सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है। नई दिल्ली में सड़क सुरक्षा पर 2रे राष्ट्रीय कॉन्क्लेव इंडियन रोड एट 2030 द सेफ स्पेस को संबोधित करते हुए श्री गडकरी ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 66% मृत्यु 18 से 45 वर्ष की आयु वर्ग में होती हैं। भारतीय जनता पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 9 उम्मीदवारों की 4थी सूची जारी की है। पार्टी ने दिल्ली कैंट सीट से भुवन तंवर को जबकि बाबरपुर सीट से अनिल वशिष्ठ को उम्मीदवार घोषित किया है। कांग्रेस ने भी आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आज 5 उम्मीदवारों की 4थी सूची जारी की है। दिल्ली में 5 फरवरी को मतदान और 8 फरवरी को मतगणना होगी। खो खो विश्व कप में आज शाम भारतीय महिला टीम का मुकाबला मलेशिया से और पुरुष टीम का सामना रात 8:15 बजे भूटान से होगा। ये मैच इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।